एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिसने सचमुच मतलब हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया। चार्ल्स डार्विन।
चार्ल्स डार्विन, हाँ, 1809 में जन्मे ये अंग्रेज प्रकृति प्रेमी।
बिल्कुल, जिन्हें अक्सर विकासवाद का पिता कहते हैं, उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है।
हाँ है तो
आज हम यही समझेंगे कि डार्विन कौन थे, उनके विचार इतने क्रांतिकारी क्यों माने जाते हैं और आज भी वो हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं।
बिल्कुल। और देखिए, डार्विन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो तो एक तरह के आप कह सकते हैं जासूस थे।
जासूस?
अच्छा, हाँ, जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनका काम सिर्फ जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। ये हमें बताता है कि हम कौन हैं और इस धरती पर हमारा स्थान क्या है एक तरह से।
तो चलिए फिर उसी जमाने से शुरू करते हैं जब डार्विन सोच रहे थे, लिख रहे थे। ये 19वीं सदी का ब्रिटेन था, विक्टोरियन दौर।
हाँ
काफी उथल पुथल का समय रहा होगा, है ना?
हाँ बिल्कुल, वो दौर ही ऐसा था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति जोरों पर थी, समाज तेजी से बदल रहा था, नए नए विचार सामने आ रहे थे, और वो जो ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट का असर था ना।
हाँ, तर्क और सबूतों पर जोर।
बिल्कुल, लोग तर्क और देखे परखे सबूतों पर ज्यादा जोर दे रहे थे। लेकिन देखिए, विज्ञान की दुनिया में तब भी एक सोच हावी थी।
कौन सी सोच?
उसे कहते थे प्राकृतिक धर्मशास्त्र या नेचुरल थियोलॉजी।
प्राकृतिक धर्मशास्त्र, ये क्या था मतलब?
आसान भाषा में कहूँ तो ये सोच थी कि प्रकृति की बनावट, खासकर जीवों की जटिलता,
जैसे हमारी आँखें या कुछ और?
हाँ बिल्कुल, और उनका अपने माहौल में एकदम फिट होना, ये सब ईश्वर के होने का सबूत है। जैसे विलियम पैले ने वो घड़ी वाली मिसाल दी थी
हाँ हाँ सुना है,
कि घड़ी मिले तो बनाने वाला भी होगा।
वही।
तो वैसे ही आँख जैसी जटिल चीज देखकर लगता है कि इसे किसी बुद्धिमान डिजाइनर ने मतलब ईश्वर ने बनाया है।
समझ गया, यानी प्रकृति ईश्वर की कारीगरी का प्रमाण। पर क्या ये विचार कि प्रजातियां बदल सकती हैं, ये एकदम नया था डार्विन के लिए?
नहीं, पूरी तरह नया तो नहीं कह सकते। प्रजातियों के बदलने, जिसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं, उसके कुछ धुंधले से विचार पहले से मौजूद थे।
जैसे?
जैसे जां बैप्टिस्ट लमार्क, उन्होंने कहा था कि जीव अपने जीवन में जो सीखते हैं या बदलते हैं वो अगली पीढ़ी को दे सकते हैं।
अच्छा, अर्जित गुणों वाली बात।
हाँ, और मजे की बात यह है कि डार्विन के दादाजी इरास्मस डार्विन, उन्होंने भी इस बारे में थोड़ा बहुत लिखा था।
सच में उनके दादाजी ने भी?
हाँ, लेकिन किसी के पास ये समझाने का कोई ठोस तरीका या मजबूत सबूत नहीं था कि ये बदलाव कैसे होता है, बस अंदाजे थे।
तो फिर डार्विन के दिमाग में एक क्रांतिकारी विचार आया कहां से? किन लोगों का उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा?
कई लोगों का। एक तो थे भूविज्ञानी चार्ल्स लायल।
लायल?
हाँ,
हाँ,
उन्होंने बताया कि पृथ्वी हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है और ये धीरे धीरे लगातार चलने वाली प्रक्रियाओं से बदली है।
मतलब अचानक आई बाढ़ या भूकंप से नहीं?
नहीं, उनसे नहीं, बल्कि धीमी लगातार चलने वाली प्रक्रियाओं से। इसे एक रूपतनवाद कहते हैं। इसने डार्विन को वो करोड़ों साल दिए
जो उनके सिद्धांत के लिए जरूरी थे।
बिल्कुल, क्योंकि विकास को एक दिन में तो होता नहीं।
हाँ, ये बात तो है, विकास के लिए तो बहुत लंबा, बहुत ही लंबा समय चाहिए।
और कोई?
एक और थे, थॉमस माल्थस। वो अर्थशास्त्री थे।
माल्थस, हाँ, जनसंख्या वाले।
हाँ, वही। उन्होंने लिखा कि आबादी हमेशा खाने पीने के साधनों से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। इससे क्या होता है?
होड़ मच जाती है। बिल्कुल, जीने के लिए एक होड़ या संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी अस्तित्व के लिए संघर्ष के विचार ने डार्विन को वो चिंगारी दी प्राकृतिक चयन की।
अच्छा, तो माल्थस के आइडिया से ये निकला।
हाँ, और हाँ, अल्फ्रेड रसल वालेस को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए।
वालिस? हाँ, वो भी तो थे।
उन्होंने डार्विन से बिल्कुल अलग मतलब अकेले ही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत सोच लिया था एक ही समय पर।
कमाल है, यानी अलग अलग दिशाओं से आई चिंगारियों ने मिलकर डार्विन के दिमाग में वो आग लगाई। अब जरा उनके बचपन और पढ़ाई लिखाई पर आते हैं। क्या वो शुरू से ही मतलब पैदाइशी वैज्ञानिक थे?
चार्ल्स डार्विन का जन्म, जैसा हमने कहा, 1809 में श्रूजबरी इंग्लैंड में हुआ था। परिवार काफी खाते पीते पढ़े लिखे लोगों का था। पिता डॉक्टर थे, दादाजी भी जाने माने विचारक। और चार्ल्स को बचपन से ही कीड़े मकोड़े, पत्थर, घोंगे ये सब जमा करने का बड़ा शौक था। घंटों बाहर घूमते रहते थे, प्रकृति को देखते रहते थे।
लेकिन सुना है उनकी पढ़ाई का रास्ता बड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, मतलब पहले डॉक्टर बनने गए, फिर पादरी बनने की सोची।
हाँ बिल्कुल, 1825 में उन्हें एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी भेजा गया डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन उस जमाने में ऑपरेशन बिना बेहोशी के होते थे।
ओहो,
उन्हें वो देखकर ही घिन आ जाती थी सच में, और क्लासें भी उबाऊ लगती थीं।
तो डॉक्टरी छोड़ दी?
हाँ छोड़ दी। फिर पिता ने सोचा चलो इसे पादरी बना देते हैं, तो 1828 में कैम्ब्रिज भेज दिया।
पादरी?
हाँ, उस समय चर्च में जाना पढ़े लिखे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आम रास्ता था करियर का।
अच्छा, ये बात थी।
मतलब पादरी बनने की पढ़ाई और काम किया एकदम उल्टा।
हाँ हाँ हाँ, कह सकते हैं। कैम्ब्रिज में भी उनका असली मन तो बीटल पकड़ने और पौधों जानवरों को देखने में ही लगता था, किताबी पढ़ाई से ज्यादा। वहीं उन्हें जॉन स्टीवंस हेंजलो जैसे बढ़िया टीचर मिले। उन्होंने चार्ल्स की असली रुचि को पहचाना और उसे बढ़ाया। असल में उनकी वैज्ञानिक सोच यहीं पर ज्यादा मजबूत हुई, एडिनबर्ग से ज्यादा। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, HMS बीगल की वो मशहूर समुद्री यात्रा।
यकीनन, वो तो उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1831 से 1836 तक पूरे 5 साल।
5 साल?
हाँ, डार्विन ने HMS बीगल जहाज पर एक प्रकृतिवादी के तौर पर दुनिया का चक्कर लगाया। सोचिए जरा, एक जवान लड़का जो इंग्लैंड से बाहर कम ही निकला था, अब वो ब्राजील के जंगल देख रहा है, एंडीज पहाड़ चढ़ रहा है, अनजान जीवों की जीवाश्म खोज रहा है। ये अनुभव भला किताबों से कैसे मिलता?
बिल्कुल नहीं। इस यात्रा का सबसे यादगार पड़ाव कौन सा था जिसने उनके विचारों को एक दिशा दी?
मेरे ख्याल से गैलापागोस द्वीप समूह।
गैलापागोस? हाँ,
ये इक्वाडोर के पास कुछ द्वीप हैं। डार्विन ने वहां देखा कि फिंच नाम की चुड़िया हर द्वीप पर थोड़ी अलग थी।
अलग मतलब?
मतलब किसी की चोंच मोटी, किसी की पतली, जैसी उस द्वीप पर खाने की चीजें थी बिल्कुल उसके हिसाब से। वैसे ही कछुओं के कवच भी हर द्वीप पर अलग अलग डिजाइन के थे।
अच्छा,
यही उनके दिमाग में वो सवाल कौंधा, क्या प्रजातियां हमेशा से ऐसी ही थीं या जरूरत के हिसाब से वक्त के साथ बदली हैं? उनके महान सिद्धांत के बीज असल में यहीं पड़े।
तो यात्रा से लौटने के बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने फौरन अपने विचार दुनिया को बता दिए जो गैलापागोस में सोचे थे?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लौटने पर लंदन के वैज्ञानिक जगत में उनका नाम तो हो गया। यात्रा के नोट्स और जो कलेक्शन वो लाए थे वो कमाल के थे। 1839 में उन्होंने अपनी कजिन एमा वेजवुड से शादी की और कैंट के डाउन हाउस नाम के घर में बस गए। और फिर उन्होंने लगभग 20 साल तक खामोशी से काम किया।
20 साल? इतना लंबा इंतजार क्यों भाई?
इसके कई कारण थे। एक तो जैसा मैंने कहा, वो बहुत मेहनती और सावधान थे, बहुत ज्यादा। वो अपने विचारों को पूरी तरह पुख्ता करना चाहते थे, हर तरह के सबूत जमा करना चाहते थे, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे।
ठीक है।
दूसरा, वो जानते थे कि उनके विचार कितने क्रांतिकारी हैं और चर्च और समाज में कैसी खलबली मचा सकते हैं। वो टकराव नहीं चाहते थे शायद।
ये भी बात है।
तीसरा, वो अपने ज्यादातर जिंदगी एक अजीब सी कमजोर कर देने वाली बीमारी से जूझते रहे, शायद चागास बीमारी थी।
ओ, क्या होता था उसमें?
उसमें दिल जोर से धड़कता था, उल्टियां होती थी, भयानक थकान रहती थी। इस वजह से वो लोगों से मिलते जुलते भी कम थे। लेकिन शायद इसी एकांत ने उन्हें अपने काम पर पूरा ध्यान देने का मौका भी दिया।
उनके निजी जीवन में भी दुखद घटनाएं हुई जैसा आपने बताया था।
हाँ, 1851 में उनकी 10 साल की प्यारी बेटी एनी की मौत हो गई। इस घटना ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया और कहते हैं कि ईश्वर पर उनका जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी शायद खत्म हो गया।
ये तो बहुत दुखद था।
और आखिर में वो चिंगारी जिसने उन्हें पब्लिश करने पर मजबूर किया वो आई 1858 में, जब अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने उन्हें अपना एक लेख भेजा।
वॉलेस का लेख?
हाँ, और उसमें हूबहू वैसा ही सिद्धांत था जैसा डार्विन ने 20 साल से सोच रखा था। तब डार्विन को होश आया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने अपनी वो महान किताब छापने का फैसला किया।
जी, अब उनकी किताबों पर आते हैं। बीगल यात्रा वाली किताब द वॉयज ऑफ द बीगल, वो तो काफी हिट हुई थी ना?
हाँ बिल्कुल, द वॉयज ऑफ द बीगल 1839। असल में ये उनके यात्रा के नोट्स थे, एक तरह की ट्रैवल डायरी। ये बहुत पसंद की गई, इसने उन्हें एक बेहतरीन लेखक और गंभीर प्रकृतिवादी के तौर पर मशहूर कर दिया, उनके विकासवाद के सिद्धांत के सामने आने से बहुत पहले ही।
और फिर आई वो किताब जिसने दुनिया हिला दी,
ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859,
यानी प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति पर।
हाँ, ये उनकी सबसे महान, सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसी किताब में उन्होंने अपना क्रांतिकारी सिद्धांत पेश किया, प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद। उन्होंने तर्क दिया कि दुनिया के सारे जीव जंतु शायद एक ही कॉमन पूर्वज से निकले हैं और करोड़ों सालों में धीरे धीरे बदलते हुए इतने विविध रूप बन गए हैं।
और ये बदलाव कैसे हुए?
ये बदलाव छोटे छोटे होते हैं जो विरासत में मिलते हैं, और प्रकृति का दबाव मतलब माहौल चुनता है कि कौन से बदलाव अगली पीढ़ी में जाएंगे और कौन से नहीं।
इस किताब ने तो यकीनन हंगामा खड़ा कर दिया होगा।
जबरदस्त, मतलब भूचाल आ गया था बौद्धिक दुनिया में, बहसें छिड़ गईं। फिर 1871 में आई द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स,
मनुष्य की उत्पत्ति और लिंग के संबंध में चयन।
हाँ, इसमें उन्होंने अपना सिद्धांत इंसानों पर लागू किया और ये कहकर सनसनी फैला दी कि इंसान और बंदरों जैसे वानर यानी एप्स उनके पूर्वज एक ही थे।
ओह, ये तो और भी बड़ी बात थी।
बिल्कुल, इसी किताब में उन्होंने यौन चयन यानी सेक्सुअल सिलेक्शन का विचार भी समझाया।
यौन चयन, ये क्या है?
यानी वो गुण जो सीधे जिंदा रहने में मदद नहीं करते पर साथी चुनने और बच्चे पैदा करने में मददगार होते हैं, जैसे मोर के खूबसूरत पंख।
अच्छा, समझ गई। और उन्होंने भावनाओं पर भी लिखा, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता?
हाँ, 1872 लाए द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स, मनुष्य और पशु में भावनाओं की अभिव्यक्ति।
भावनाओं की अभिव्यक्ति,
हाँ, ये आज भी मनोविज्ञान और पशु व्यवहार यानी इथोलॉजी के लिए एक बुनियादी किताब मानी जाती है। डार्विन ने कहा कि हमारे हाव भाव, गुस्सा, खुशी, डर, ये सब हमें जानवरों से विरासत में मिले हैं और ये पूरी दुनिया में कमोबेश एक जैसे हैं।
दिलचस्प।
और उनकी आखिरी बड़ी किताब जानते हैं किस पर थी? केंचुओं पर।
केंचुओं पर,
हाँ, द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल मोल्ड थ्रू द एक्शन ऑफ वर्म्स, 1881। ये दिखाती है कि वो कितने धैर्य से छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करके कितने बड़े नतीजे निकाल सकते थे।
कमाल है। अब जरा डार्विन के मुख्य विचार, ये जो प्राकृतिक चयन है, इसको और आसान भाषा में समझते हैं, ये है क्या आखिर?
बिल्कुल, देखिए, डार्विन ने कुछ सीधी साधी बातें देखी अपने आसपास। पहली, कि किसी भी प्रजाति के जीवों में आपस में छोटे मोटे फर्क होते हैं, वेरिएशंस जिन्हें कहते हैं। जैसे हम इंसानों में कोई लंबा है, कोई छोटा, किसी की आंखें नीली, किसी की काली।
हाँ, बिल्कुल।
दूसरी बात, जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने बड़े होकर खुद बच्चे पैदा नहीं कर पाते। खाने पीने, जगह, शिकारी जानवरों वगैरह के लिए एक संघर्ष चलता रहता है,
अस्तित्व के लिए संघर्ष।
हाँ। तीसरी बात, जिन जीवों में ऐसे फर्क होते हैं जो उन्हें अपने माहौल में ज्यादा फिट बनाते हैं।
फिट मतलब?
फिट मतलब जो उन्हें उस माहौल में जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने में ज्यादा मदद करते हैं, जैसे ठंडी जगह पर ज्यादा बाल होना।
अच्छा,
तो ऐसे जीवों के बचने और बच्चे पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है।
ठीक है।
और चौथी बात, अगर ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों साल तक चलती रहे तो धीरे धीरे इतने बदलाव आ जाते हैं कि नई प्रजाति बन जाती है।
मतलब?
प्रकृति खुद ही चुनाव कर रही है बिना किसी इरादे के। एकदम सही, यही सबसे क्रांतिकारी बात थी। डार्विन ने पहली बार दिखाया कि जीवन की जटिलता और विविधता को समझाने के लिए किसी बाहरी डिजाइनर या ईश्वर की जरूरत नहीं है। ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं से अपने आप हो सकता है। इसने जीव विज्ञान को सिर्फ जानवरों पौधों के लिस्ट बनाने से निकालकर एक असली विज्ञान बना दिया, जिसका आधार था जीवन का वृक्ष, यानी सब जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, एक कॉमन पूर्वज से निकले हैं।
हाँ, ट्री ऑफ लाइफ।
बिल्कुल, आज की जेनेटिक्स, मेडिसिन, इकोलॉजी, ये सब इसी नींव पर खड़ी हैं।
तो ये पहले के घड़ीसाज ईश्वर वाले विचार के बिल्कुल उलट था।
हाँ, ये उसका सीधा सबूतों पर आधारित जवाब था। पहले का कहना था कि दुनिया एक बनी बनाई परफेक्ट मशीन है। डार्विन ने कहा, नहीं, दुनिया लगातार बदल रही है, इसमें संयोग यानी चांस और जरूरत यानी नेसेसिटी का खेल चल रहा है।
लैमार्क से भी उनका मतभेद था, है ना?
हाँ, बिल्कुल। लैमार्क सोचते थे कि मेहनत से कमाए गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं, जैसे लोहार के बेटे की भुजाएं अपने आप मजबूत होंगी। डार्विन ने कहा, नहीं, बदलाव ज्यादातर अचानक मतलब रैंडम आते हैं और माहौल तय करता है कि कौन सा बदलाव टिकेगा और कौन सा नहीं।
ठीक है, अब बात करते हैं डार्विन की विरासत की। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज छपने के बाद क्या हुआ, माहौल कैसा था?
किताब आते ही बेस्टसेलर बन गई, जोरदार बहसें शुरू हुई अखबारों में, चर्चों में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह। वैज्ञानिक समुदाय ने तो धीरे धीरे विकासवाद के विचार को मान लिया कि हाँ, प्रजातियां बदलती हैं, लेकिन ये प्राकृतिक चयन वाला हिस्सा पहचाना मुश्किल था
कि ये सब बिना किसी मकसद के हो रहा है।
हाँ, यही बात, कि ये सब बिना किसी दिशा या लक्ष्य के अपने आप हो रहा है। इसे पूरी तरह तब माना गया जब 20वीं सदी में मेंडल के आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के नियमों के साथ इसे जोड़ा गया।
अच्छा, जब पता चला कि ये बदलाव आते कैसे हैं और अगली पीढ़ी में जाते कैसे हैं।
बिल्कुल, तब जाकर आधुनिक विकासवादी संश्लेषण मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस हुआ।
लेकिन उनके विचारों का गलत इस्तेमाल भी हुआ है ना, ये सोशल डार्विनिज्म जैसी चीजें।
हाँ, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हर्बर्ट स्पेंसर जैसे कुछ और लोगों ने डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सबसे योग्य का बचना वाले विचार को लिया और उसे इंसानी समाज पर थोप दिया। उन्होंने कहा कि समाज में भी अमीरों, ताकतवर नस्लों या देशों का आगे बढ़ना और कमजोरों का पिछड़ना, यह सब प्राकृतिक है, इसे रोकना नहीं चाहिए।
ओह,
इससे नस्लवाद, साम्राज्यवाद और अमीरों को और अमीर बनने देने वाली सोच, जिसे लेसे-फेयर कैपिटलिज्म कहते हैं, उसको बढ़ावा मिला।
लेकिन डार्विन का इससे कोई लेना देना नहीं था।
नहीं, ये जोर देना बहुत जरूरी है कि ये डार्विन के जैविक सिद्धांत को पूरी तरह तोड़ मड़ोड़कर पेश करना था। डार्विन ने खुद कभी ऐसी बातों का समर्थन नहीं किया, बल्कि उनकी निजी लिखतों से पता चलता है कि वो सामाजिक न्याय को लेकर चिंतित थे।
और ये फिटेस्ट का मतलब क्या है असल में? क्या सबसे ताकतवर?
नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। फिटेस्ट का मतलब सबसे मजबूत या सबसे चालाक नहीं है, इसका मतलब है अपने माहौल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त, मतलब बेस्ट अडेप्टेड।
अच्छा, माहौल के हिसाब से।
हाँ, रेगिस्तान में कैक्टस फिट है क्योंकि वो पानी बचा सकता है। ठंडी जगह पर मोटा फर वाला भालू फिट है। भीड़ में चुपचाप निकल जाने वाला चूहा भी फिट हो सकता है। ये पूरी तरह माहौल पर निर्भर करता है।
और आज डार्विन कितने प्रासंगिक हैं? क्या उनके विचार सिर्फ किताबों में रह गए हैं?
अरे बिल्कुल नहीं, डार्विन का सिद्धांत आज भी बायोलॉजी की रीढ़ है, सेंट्रल आइडिया है।
जैसे
हमें समझना है कि एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया पर बेअसर क्यों हो रही हैं, या कोरोना जैसे वायरस कैसे फैलते और बदलते हैं, या किसी लुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। इन सब के जवाब विकासवाद में हैं। इंसान की जेनेटिक्स समझने में, बीमारियों को समझने में, यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस में नए अल्गोरिदम बनाने में भी, जैसे जेनेटिक अल्गोरिदम, उनके विचारों का इस्तेमाल होता है।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं शायद, जो उनके विचारों को और अच्छे से समझाते हैं।
हाँ, कई हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का वो आखिरी वाक्य बहुत सुंदर है और बहुत मशहूर भी। जीवन के इस नजरिए में एक शान है कि इतनी सरल शुरुआत से अंतहीन रूप, सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत विकसित हुए हैं और हो रहे हैं।
वाह, ये तो बहुत काव्यात्मक है,
है ना? ये दिखाता है कि वो जीवन की विविधता देख के कितने अचंभित और प्रभावित थे।
वो सामाजिक चिंता वाला कथन कौन सा था?
हाँ, वो उनके नोट्स से है, जो सोशल डार्विनिज्म वालों के लिए एक जवाब जैसा लगता है। अगर हमारे गरीबों की बुरी हालत प्रकृति के नियमों की वजह से नहीं, बल्कि हमारे बनाए संस्थानों की वजह से है, तो हमारा गुनाह बहुत बड़ा है।
ये उनकी सामाजिक चेतना दिखाता है।
बिल्कुल, और उनकी मेहनत पर भी कुछ कहा है, समय की कीमत पर।
हाँ?
अपनी लगन दिखाता है।
सही बात है।
इंसान की उत्पत्ति पर वो डिसेंट ऑफ मैन में लिखते हैं, इंसान अपने सभी महान गुणों के साथ अपने शरीर के ढांचे में अपनी निचली उत्पत्ति की अमिट छाप लिए हुए हैं। और बदलाव के साथ ढलने पर एक मशहूर बात कही जाती है, जो शायद शब्दशः उनके न हो पर विचार उनका ही है, वो प्रजाति नहीं बचती जो सबसे ताकतवर है, ना ही वो जो सबसे बुद्धिमान है, बचती वो है जो बदलाव के साथ सबसे अच्छे से ढल जाती है।
अडैप्टेबिलिटी इज की। जाहिर है इतने बड़े विचारों का विरोध तो होना ही था। किस तरह का विरोध हुआ?
जबरदस्त, सबसे टिकाऊ और मुखर विरोध धार्मिक हलकों से हुआ। कई लोगों को लगा और आज भी लगता है कि डार्विन की बातें बाइबल या दूसरे धर्म ग्रंथों में लिखी सृष्टि की कहानी के बिल्कुल खिलाफ हैं।
हाँ, ये टकराव तो आज भी है।
बिल्कुल, ये बहस आज भी चलती है अमेरिका जैसे देशों में सृष्टिवाद, क्रिएशनिज्म या इंटेलिजेंट डिजाइन के आंदोलनों के रूप में। 1860 में ऑक्सफोर्ड में एक बहुत मशहूर बहस हुई थी।
हाँ, हक्सले और विल्बरफोर्स वाली।
हाँ, डार्विन के समर्थक थॉमस हक्सले और बिशप विल्बरफोर्स के बीच। वो इसी टकराव का एक बड़ा प्रतीक है।
और वैज्ञानिक दुनिया में भी शुरू में सवाल उठे थे।
हाँ, शुरू में वैज्ञानिकों ने भी कई सवाल उठाए थे, जायज सवाल थे उस समय के हिसाब से। जैसे, क्या पृथ्वी वाकई इतनी पुरानी है जितनी डार्विन कह रहे हैं? ये बदलाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते कैसे हैं, क्योंकि जेनेटिक्स का तो तब पता नहीं था। ये बदलाव आते कहाँ से हैं, इनका स्रोत क्या है?
और वो जीवाश्मों वाली बात।
हाँ, कि अगर प्रजातियां धीरे धीरे बदली हैं तो उनके बीच के लिंक वाले जीवाश्म कहाँ हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म्स क्यों नहीं मिलती ज्यादा?
तो इन सवालों के जवाब मिल गए बाद में।
अच्छी बात यह है कि हाँ, बाद के विज्ञान ने जियोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन ज्यादातर सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। पृथ्वी की उम्र का पता चला, डीएनए और जेनेटिक्स की खोज हुई, और बहुत से ट्रांजिशनल फॉसिल्स भी मिले।
चलिए, ये तो हुई गंभीर बातें। डार्विन की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ मजेदार किस्से भी हैं। उन्हें अक्सर सिर्फ किताबों में डूबे रहने वाले गंभीर बीमार से इंसान की तरह ही देखा जाता है।
हाँ, नहीं, उनकी जिंदगी में भी दिलचस्प पहलू थे। जैसे कहते हैं कि शादी करने से पहले उन्होंने बाकायदा एक लिस्ट बनाई थी शादी करने के फायदे और नुकसान।
सच में, क्या लिखा था उसमें?
फायदों में लिखा था बच्चे, हमेशा का साथी, घर का आकर्षण, और नुकसान में लिखा था कहीं भी आने जाने की आजादी कम, किताबों के लिए कम समय, वक्त की बर्बादी।
हाँ, ये तो बड़ा हिसाब किताब लगाकर फैसला लिया उन्होंने।
और खाने के बड़े शौकीन थे और काफी प्रयोग करने वाले। कैम्ब्रिज में वो एक ग्लटन क्लब यानी पेटू क्लब के सदस्य थे।
ग्लटन क्लब?
हाँ, जो अजीब अजीब जानवर पकाकर खाता था। कहते हैं उन्होंने बाज, एक तरह का बगुला, बिटन, और यहाँ तक कि एक बूढ़ा भूरा उल्लू भी खाया था।
उल्लू खाया था?
हाँ, जिसका स्वाद उन्हें बयां से बाहर लगा। बीगल यात्रा पर भी वो आर्माडिलो, शुतुरमुर्ग जैसे पक्षी, रिया, इगुआना वगैरह खाते थे और अपनी डायरी में नोट करते थे कि स्वाद कैसा था।
ये कुछ ज्यादा ही प्रयोग धर्मी नहीं हो गया?
हाँ, कह सकते हैं। उनकी बीमारी की वजह से वो ज्यादातर एकांत में रहते थे, जिसने शायद उन्हें अपने काम पर फोकस करने में मदद भी की। वो बैकगमॉन, एक तरह का बोर्ड गेम होता है, वो खेलने के शौकीन थे।
अच्छा।
और अपनी पत्नी एमा के साथ खेले गए गेम्स का पूरा हिसाब रखते थे। ज्यादातर एमा ही जीतती थी। हाँ, अपने स्टडी रूम में उन्होंने एक शीशा इस तरह लगा रखा था कि दरवाजे पर आए मेहमानों को बिना गर्दन घुमाए या उठे देख सकें। वो काम में रुकावट पसंद नहीं करते थे बिल्कुल।
और वो सोचने वाला रास्ता क्या था? थिंकिंग पाथ?
डाउन हाउस में उन्होंने अपने बगीचे में एक बजरी का रास्ता बनवाया था जिसे सैंड वॉक कहते थे। वो रोज उस पर टहलते थे अपनी वैज्ञानिक समस्याओं के बारे में सोचते हुए।
अच्छा।
कहते हैं कि जब कोई मुश्किल सवाल होता था तो वो हर चक्कर पर अपनी जेब से एक कंकड़ निकालकर रास्ते के किनारे रखते जाते थे ताकि हिसाब रख सके कि कितनी बार उसका सोचा।
क्या बात है, कितना मेथोडिकल तरीका था सोचने का भी। तो कुल मिलाकर चार्ल्स डार्विन की विरासत क्या है, हम उन्हें कैसे याद रखें?
चार्ल्स डार्विन ने जीवन को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उनका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पहली बार एक ठोस वैज्ञानिक व्याख्या लाया कि पृथ्वी पर इतनी तरह के जीव जंतु क्यों और कैसे बने। उन्होंने दिखाया कि सब कुछ किसी देवीय योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक, लगातार चलने वाली, बिना दिशा वाली प्रक्रिया का नतीजा है। उन्होंने एक तरह से इंसान को प्रकृति के सिंहासन से उतारकर उसी का एक हिस्सा बना दिया।
उनका असर सिर्फ जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं रहा, जैसा आपने शुरू में कहा था।
बिल्कुल नहीं, उनके काम ने दर्शन, धर्म, समाज, हर चीज पर गहरे सवाल खड़े किए। उन्होंने हमें अपने बारे में, दुनिया में अपनी जगह के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, ये इंसान की सोच में एक बुनियादी बदलाव था, एक क्रांति।
और उनका तरीका, उनका मेथड भी उतना ही अहम है ना?
हाँ बिल्कुल, उनका धैर्य, उनका सालों तक लगकर सबूत इकट्ठा करना, अपने समय की मान्यताओं को बिना डरे चुनौती देना, ये वैज्ञानिक खोज का एक बेहतरीन नमूना है। बारीकी से देखना, सबूत जुटाना और फिर तर्क करना, यही तरीका आज भी विज्ञान की जान है।
आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। डार्विन ने दिखाया कि जीवन रुका हुआ नहीं है, ये लगातार बदल रहा है, ढल रहा है। तो इस लगातार चलती कहानी में हम इंसानों का अगला पड़ाव क्या हो सकता है, और क्या अपने इस विकासवादी अतीत को समझना हमें भविष्य के लिए किसी तरह बेहतर तैयार कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्तरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।